6 सितंबर 1965 की सुबह 9 बजे तीन जाट ने छोगिल नहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। नहर के किनारे हुई लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना ने बटालियन के भारी हथियारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद 11 बजे तक उन्होंने पहले नहर के पश्चिमी किनारे पर बाटा नगर पर कब्जा किया और फिर डोगरई पर। लेकिन भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों को उनके इस कारनामे की जानकारी नहीं मिल पाई। डिवीजन कार्यालय को कुछ गलत सूचनाएं मिलने के बाद उनसे कहा गया कि डोगरई से 9 किलोमीटर पीछे हटकर संतपुरा में पोजिशन ले ले। वहां पर उन्होंने अपने ट्रेंचेस खोदे और पाकिस्तानी सैनिकों के भारी दबाव के बावजूद वहीं डटे रहे। 21 सितंबर की रात को तीन जाट ने डोगरई पर दोबारा हमला कर उस पर कब्जा किया। लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरफ से बहुत से सैनिक मारे गए। इस लड़ाई की गिनती दुनिया की बेहतरीन लड़ाइयों में होती है और इसे कई सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल V.N. शर्मा याद करते हैं।
जैसे हम लोगों का 6 सितंबर को शुरुआत हुई, 2-4 घंटे में ये जो पलटन है ये सीधी डुगराई के इलाके में पहुंच गई और उनके कुछ जवान और सैनिक क्रॉस करके वो बाटा शू फैक्ट्री तक पहुंच गए। जूते भी ले आए वहां से 3-4 ने। उनको हुक्म मिला तुम वापस आओ क्योंकि तुम्हारा डिफेंस इधर है। जब वो वापस आए तो पाकिस्तानियों ने अपना वो आड़ डुगराई का बड़ा पक्का कर लिया। पूरी उनकी पलटन थी वहाँ पर। तो उस पलटन में मेरे ख्याल में 2-3 कंपनी कैनाल के इस साइड में थी, हमारे साइड, एक कंपनी रिजर्व परली साइड में। उन बड़े अच्छे डिफेंस बनाए बिकॉज वो तो मेन सड़क है लाहौर को आने वाली वगा से। तो वहाँ उनको हुक्म मिला था कि तुम सब लड़के मरोगे यहीं पे, यहीं कोई हटेगा नहीं। इतने हद तक कि उनका हुक्म था कि कोई भी जवान इछुगल कैनाल को इस तरफ को पार नहीं कर सकता क्योंकि उनकी कंपनी थी वहाँ पर। तुमको अपनी गोली लगेगी अगर तुम यहाँ आने की कोशिश करो। करीब 18 तारीख को जब हमारी पोजिशन थोड़ी सेटल हो गई तो डजमेंट हेड ने कहा कि मैंने वो जगह पकड़नी है क्योंकि मैंने ली थी और मैं मुझे आप लोगों ने वापस बुलाया, मैं लूँगा। तो उसके ब्रिगेड कमांडर ने इजाज़त दे दी तो वो उत्तर की तरफ गया डुगराई से करीब 3-4 किलोमीटर और इछुगल कैनाल तक पहुँच गया। फिर वहाँ से अपनी पलटन को रातों रात ऐसे कैनाल के साथ अलाइन करके वहाँ से हमला बोला। बंकरों की लड़ाई हुई ऐसे कोई पूरी रात और मेरे ख्याल में दोपहर तक अगले दिन तक ये लड़ाई चलती है। फिर उन्होंने कब्जा कर तब हम पहुँचे अगले और वहाँ हम देख रहे थे उनका जाटों का संतरी खड़ा था और मुर्दे एक दूसरे के पटांग में 10-10 पाइल लगे हुए हैं सब जगह पाकिस्तानियों के भी और कुछ ऐसी भयानक लड़ाई थी।
डोगरई की लड़ाई के नायक थे लेफ्टिनेंट कर्नल हेट। 21 और 22 सितंबर की रात को जब सैनिक अपनी ट्रेंच में बैठे हुए थे, कर्नल हेट ने ट्रेंच की दीवार से अपना पैर टिकाया हुआ था। जैसे ही पाकिस्तानियों ने गोलाबारी शुरू की, उन्होंने अपना हेलमेट लगाया और ट्रेंच के बाहर निकलकर आ रहे गोलों के बीच चहलकदमी करने लगे। उस लड़ाई में भाग लेने वाले मेजर जनरल B.R. वर्मा याद करते हैं।
जब शेलिंग होती थी तो हेड साहब अपने मोर्चे से बाहर निकल आते थे और घूमना शुरू कर देते थे पूरी पलटन में। जो सिपाही भी देखते थे, अफसर भी देखते थे, जो कंपनी कमांडर है उसको साथ में ले लिया। मेरा मोर्चा उनके पास नज़दीकी था, कभी मेरे को साथ में ले लिया कि चलो लेट्स गो अराउंड। उससे जो सिपाहियों के मन में था वो भय शेलिंग वेलिंग का या फायरिंग आर्टिलरी फायरिंग का, ये सब भय तकरीबन उन्होंने निकलवा दिया था।
1965 की लड़ाई पर किताब लिखने वाली रचना बिष्ट बताती हैं कि 21 सितंबर की रात जब हेड ने अपने सैनिकों को संबोधित किया तो उनसे उन्होंने 2 मांगे की।
लेफ्टिनेंट कर्नल हेड वो हर एक की ट्रेंच में गए और जाके उन्होंने सबको बोला कि आज की लड़ाई में अगर हम मर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है ये, और आप बिल्कुल फिकर मत करिए, हमारी फैमिलीज को बहुत अच्छे से देखा जाएगा। और सबको उन्होंने कहा कि कल लड़ाई में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, पहली ये है कि कोई पीछे नहीं हटेगा और दूसरी ये है कि हमें जिंदा या मुर्दा डोगरई में मिलना है। तो इनफैक्ट उसके बाद में वो किसी एक जवान से उन्होंने पूछा कि अगर कल CO साहब यानी कि कर्नल हेड खुद जख्मी हो जाते हैं तो तुम क्या करोगे। तो उस जवान ने कहा कि CO साहब को उठा के डोगरई में ले जाएंगे क्योंकि CO साहब का ही आदेश है कि जिंदा या मुर्दा हमें डोगरई में मिलना है।
उस दिन का विवरण देते हुए उनके एक और साथी मेजर जनरल वर्मा कहते हैं,
एवरी मैन न्यू, सबको मालूम था हमारे सामने जो चीज है वो सिर्फ ये है कि हमने डोगराई ही जाना है, डोगराई हमने लेनी है। तो ये बिल्ड करनी स्पिरिट बड़ी भारी चीज़ है। और एक इंसिडेंट तकरीबन ये 7 तारीख का है, 7 सितंबर का, मेरे को हेड साहब ने खुद एक दफ़ा बताया था। मैं जब 3 जार्ड में पल्टन में उनके पास गया था कि कुछ ऐसा मौका मिला, कुछ लड़के कुछ इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे जब शेलिंग होती है ना, तो इन्होंने शेलिंग के दौरान में पूरी पल्टन इकट्ठी कर ली कि चुपके से बैठ जाओ, अगर कुछ होना होगा कोई बात नहीं। और बोले कि देखो मैं तुम्हारा सी हूँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम लड़ोगे, कोई और मेरे को छोड़ के मत तुम, मतलब कि मैं लड़ूंगा, तुमने अगर भागना है तो बात तुम्हारी दूसरी है, और मैं नहीं आऊंगा वापस, और ये तुम्हारे सर पे कलंक रहेगा एक किस्म का कि तुम अपनी पलटन को या अपने सीओ को छोड़ के भागे हो।
ठीक 1:40 पर हमले की शुरुआत हुई। डोगराई के बाहरी इलाके में सीमेंट के बने पिल बॉक्सेस से पाकिस्तानियों ने मशीन गन से जबरदस्त हमला किया। सूबेदार पाले राम ने चिल्लाकर कहा, सब जवान दाहिनी तरफ से मेरे साथ चार्ज करेंगे। जो सैनिक गोली खाकर गिरे उन्हें वहीं पड़े रहने दिया गया। पाले राम के सीने और पेट में 6 गोलियां लगी, लेकिन तब भी उन्होंने जवानों को कमांड देना जारी रखा। हमला कर रहे 108 जवानों में सिर्फ 27 जीवित बच पाए। बाद में कर्नल हेड ने अपनी किताब द बैटल ऑफ डोगराई में लिखा,
ये एक अविश्वसनीय हमला था। इसका हिस्सा होना और इसको इतने नजदीक से देख पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी।
कैप्टन बी.आर. वर्मा अपने सीओ से 18 गज पीछे चल रहे थे कि अचानक उनकी दाहिनी जांग में कई गोलियां लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। उधर कंपनी कमांडर मेजर आसाराम त्यागी को भी 2 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा।
जब वो लड़ाई के लिए गए तो इनको पहले 2 गोलियां लगी, फिर 2 गोलियां और लगी और आगे बढ़ते गए। उसके बाद में ब्रूटल बेनेट फाइट हुई जिसमें कि त्यागी का पूरा स्टमक वाज रिप्ड अपार्ट, बट वो जो कर रहे थे वो उन्होंने किया। टैंक, आई थिंक दे वर ट्राइंग टू कैप्चर अ टैंक, दे डिड इट, कर दिया उन्होंने, और त्यागी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए उसके बाद में। और कर्नल शेखावत 2IC थे उस यूनिट में, तो वो इवैक्यूएट कर रहे थे वुंडेड को, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मुझे त्यागी ही मिला। वो पिल बॉक्स के सामने इतनी जख्मी हालत में था और बहुत ही कष्ट और बहुत दर्द में थे, तो बोलते हैं कि वो इतने दर्द में था कि उसने मेरे को बोला कि सर आप एक गोली आप मुझे मार दीजिए, मैं बचूंगा नहीं पर मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूँ, आप मेरे पहले कंपनी कमांडर थे। He said we tried, हमने सब कुछ किया पर वो नहीं बचा पाए, त्यागी डाइड।
आसाराम त्यागी एक कंपनी कमांडर थे। पहली बात तो वो बहुत मेहनती और बहुत ही सिंसियर आदमी थे। अगर आप उनसे कुछ बोल दीजिए कुछ ऐसे शब्द के भी ये ठीक नहीं था तो वो बहुत उसको गौर से देखने वाले थे। दूसरी बात वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन थे। आप यकीन मानिए उनकी जो बाजू थे, बाजू की उंगलियां उनके घुटने के नीचे तक पहुंचती थी जब वो खड़े होते थे। फिजिकली वेरी स्ट्रांग, मेंटली वेरी स्ट्रांग, और बस बहुत हसमुख आदमी बट वेरी सिंसियर मैन, और पर्सनली बहुत ब्रेव आदमी थे। लॉयल्टी देखिए, वो मेरे साथ लेटे हुए थे दिन के टाइम, जब हमारा इवैक्यूएशन का टाइम आया तो बोले, वो मेरे से जूनियर थे, बोले सर आप जाइए मैं तो आपसे जूनियर हूँ। मैं कहा क्या बात कर रहे हो आसाराम, तुम्हारे चोट इतनी लगी हुई है, पर नहीं सर आप जाओ। मैं कहा दिस इज एन ऑर्डर, आप जाइए, यू विल बी इवैक्यूएटेड फर्स्ट। ऐसी लॉयल्टी उस आदमी के अंदर थी।
सुबह के 3 बजते डोगराई पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। इस लड़ाई के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल DF हेड, मेजर आसाराम त्यागी और कैप्टन KS थापा को महावीर चक्र दिया गया। हेड को याद करते हुए मेजर जनरल वर्मा कहते हैं,
ना वो सिगरेट पीते थे ना शराब पीते थे, लेकिन ये है अपना डिस्टेंस जरूर मेंटेन रखते थे अपनी कमांड से, लेकिन उनका हिस्सा था। तो एज एन इंडिविजुअल बहुत एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी थी। अब जब लड़ाई से आप देखिए 5 सितंबर को जब ये ऑर्डर्स मिले कि हमने 6 सितंबर को जाना है, उस दिन तक कर्नल मंडी साहब CO थे और इनको लास्ट मिनट के ऊपर 5 सितंबर को इनको CO बनाया गया, प्रमोशन दी गई। तो जब इनको प्रमोशन दी गई तो ये एकदम एक्सेप्टेबल हो गए एज ए लीडर इन द बटालियन, क्योंकि बहुत पुराने अफसर थे, सब इनको जानते थे। अब जब लड़ाई 6 तारीख को हुई और डोगराई तक पहुंच गए, किसी वजह से आना पड़ा, लेकिन उस एक्शन के लिए मेरा ख्याल है इनको उसी एक्शन के लिए महावीर चक्र तो वही मिल गया था। मेरा ख्याल है 10 या 11 12 तारीख को अनाउंस ही हो गया, तो उससे इनकी छवि और भी पलटन में अच्छी हो गई कि अबड़े हमारे लीडर हैं।
कर्नल हेड 2013 तक जीवित रहे। रचना बिष्ट की उनसे तब मुलाकात हुई थी जब दिल्ली के सैनिक अस्पताल में उनका त्वचा के कैंसर का इलाज चल रहा था।
ब्रिगेडियर हेड कोटद्वार में रहते थे और कोटद्वार मेरा होम टाउन है। ये गढ़वाल का एक छोटा सा शहर भी नहीं कह सकते, गांव और शहर के बीच में कस्बा टाइप का है, जहाँ पर एक शांत सी नदी बहती है जिसका नाम खो है, पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ से। तो ब्रिगेडियर हेड को मैं मिल चुकी थी दिल्ली के RNR हॉस्पिटल में भी, जब वो अपने मृत्यु से एक साल पहले ट्रीटमेंट करा रहे थे। उनको स्किन कैंसर था उनको, और पूरे उनके बदन पे उसका असर हो गया था, उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। ही वॉज इन टेरेबल पेन। पर मैं जब भी वहाँ जाती थी उनके कमरे में, जो वार्ड में वो रुके हुए थे, तो कभी भी मैंने उनको दुखी या अपसेट या डीमोरलाइज नहीं देखा। वो हमेशा कोई या तो जॉन ग्रीशम की किताब पढ़ते रहते थे, या धीरे धीरे जितना जैसे वो कर सकते थे अपना काम वो खुद करते थे। ही वॉज एन एंग्लो इंडियन और उनमें कुछ ब्रिटिश जीन्स थे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक बार मैंने देखा तो वो अपना सूटकेस पैक कर रहे थे और उनको इतना दर्द था कि वो एक सूटकेस जो शायद कोई नॉर्मल आदमी 5 मिनट में पैक कर लेता, उनको करीब 45 मिनट लगे, पर उन्होंने वो खुद किया। ड्रॉअर खोल के अपना सामान निकाल के तय करके सब खुद किया। ही वॉज एन अमेजिंग मैन, नो डाउट्स अबाउट इट। और कोटद्वार के लोग तो अभी भी याद करते हैं कि उनके घर की छत टूट जाती थी तो वो अपनी कमीज उतार के गर्मी के मौसम में खुद चढ़ जाते थे छत के ऊपर और कीलें ठोक करके उसको ठीक कर रहे होते थे। उन्होंने अपनी जितना भी वो बहुत प्रॉपर्टी है उनकी कोटद्वार में, उन्होंने सारी डोनेट कर दी एक स्कूल के लिए। एक ट्रस्ट बनाया उन्होंने अपने फादर इन लॉ और अपनी वाइफ के नाम पे, और वहाँ पर एक स्कूल चलाया जिसको हेरिटेज एकेडमी कहते हैं। और खुद वो इतना खूबसूरत घर था, उन्होंने वो छोड़ दिया, उसके पीछे एक 2 कमरों का छोटा सा एक मकान बनाया जिसका नाम उन्होंने हेडन रखा, हेड्स डेन, और वहीं रहते थे, उन 2 कमरों में ही रहते थे। उन्होंने करीब 40 stray dogs अडॉप्ट किए हुए थे, तो वो कुत्ते भी उनके साथ ही रहते थे। ही वॉज प्रॉबली द ओनली आर्मी ऑफिसर हु वॉज ड्रॉन बाय हुसैन, एंड आई हैव हर्ड ही वॉज ड्रॉन इन द बैटल फील्ड, तो वो लड़ाई के मैदान में उनकी पोर्ट्रेट बनी थी।
वो चित्र अभी भी बरेली के रेजिमेंटल सेंटर म्यूजियम में रखा हुआ है। रेहान फजल, BBC दिल्ली।